that beautiful message by this
magnificent. हमको उन्हें प्रेरणा दिया गया है 16 जुलाई 1953 को मेरी पत्नी जनीन और मेरे में युवा दंपति के रूप में यूटा मेंटी मंदिर में वेदी के सामने घुटने के बाल झुके थे। अध्यक्ष लिविस आर एंडरसन ने मोहरबंदी के अधिकार का उपयोग किया और हमें अनंत के लिए विवाहित पति और पत्नी की घोषित किया था। मेरे पास उस शांति पर और स्वच्छता के बैन नहीं करने की शक्ति नहीं है जो मुझे उस आश्वासन से मिली थी। यदि मैं एकता से जीवन जीता हूँ तो उसके उस पवित्र विधि के कारण जिसे उचित पौरोहित्य के आदर के साथ प्रभु के घर में किया था। मैं अपनी प्रिय जिनिन और अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए हो रहा है। हमारे साथ बच्चे मंदिर के पवित्र विधि के द्वारा हमारे साथ मोहरबंद है। मेरे बहुमूल्य पत्नी जिनिन और हमारे दो बच्चे पर्दे के पार जा चुके हैं। वो हमारे परिवार के बाकी सदस्यों के धार्मिकता से रहने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हमें मंदिर में प्रतिज्ञा की गई सभी आशीष मिले। विवाह और परिवार स्वर्ग के पिता की आनंद की योजना के दो अनिवार्य स्तंभ है। इन दोनों स्तंभों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि शैतान परिवार को विभाजित करने और मंदिर धर्मविधिया जो परिवार को अनंतता के लिए जोड़ती है के महत्व को कम करने का लगातार प्रयास करता रहता है। जीवन के अनुभव के साथ मंदिर मोहरबंदी का अभिप्राय अधिक समझ में आता है। यहाँ आपके निकट जाने और अधिक आनंद पाने और नश्वरता का परिपूर्णता से पाने में मदद करता है। एक बार मैंने अपनी पत्नी से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। मैं अपने व्यवसाय में अत्यधिक यात्रा करता था। मैं लगभग 2 हफ्ते के लिए बाहर था और एक शनिवार शाम को वापस घर पहुंचा। एक सभा में जाने के लिए मेरे पास 4 घंटे थे। मैंने ध्यान दिया कि हमारी कपड़ा धोने की छोटी मशीन खराब थी और मेरी पत्नी हाथों से कपड़ा धो रही थी। मैंने मशीन को ठीक करना शुरू किया। जिनिन निकट आई और बोली, रिच तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं कपड़े धोने की मशीन ठीक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें हाथों से न धोना पड़े। उसने कहा, नहीं जाओ बच्चे के साथ खेलो। मैंने कहा, मैं उनके साथ कभी भी खेल सकता हूँ, मैं तुम्हारे मदद करना चाहता हूँ। वो फिर बोली, रिचर्ड कृपया जाकर बच्चों के साथ खेलो। जब उसने मुझे अधिकार के साथ कहा तो मैंने उसके कहना माना। मैंने बच्चों के साथ बहुत अच्छी समय व्यतीत किया। हमने एक दूसरे के पीछे किया और पत्थर के पतों पर लड़के। बाद में भी आपने सभा में कहा, यदि वह मुझे इस अनुभव से सबक नहीं सिखाती तो शायद मैं उस अनुभव को भूल गया था। अगली सुबह लगभग 4 बजे मैं उठा गया जब दो छोटी बाहों ने मुझे गले लगाया, गाल पर चुमा और इन शब्दों के मेरे कानों में धीरे से कहा, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, पिताजी मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे सबसे प्रिय दोस्त हैं। यदि आपको अपने परिवार में इस प्रकार का अनुभव नहीं होता है तो आप जीवन के अलौकिक आनंद में से एक को नहीं पा रहा है। यदि आप उचित आयु के युवक हैं और विवाहित नहीं हो, आपने समय को बेकार को खेजी में न गवाए। जीवन की शुरुआत करें और विवाह करने के पर ध्यान दिए। जीवन के इस मोड़ पर उचित लक्ष्य के पाने के लिए सक्रिय रहें। युवकों एक सम्मानजनक मिशन सेवा करें, फिर योग्य अनंत साथी पाने को सर्वोत्तम प्राथमिकता दें। जब किसी युवती को आपके रुचि बढ़े, उसे दिखाए कि आप एक ऐसे आसान व्यक्ति हो जिसको बारे में उसे अधिक जानना चाहे। उसे उत्तम स्थानों पर ले जाएं, डेट पर रचनात्मक रहें। यदि आप चाहते हो कि आपकी एक बढ़िया पत्नी मिले, आपको उसके लिए आकर्षित होना होगा। यदि आपको कोई ऐसा मिल जाता है, आप बहुत बढ़िया प्रणय निवेदन और विवाह कर सकते और प्रभु द्वारा स्थापित योग्य बंधनों के अंत तक रहते हुए अनंतता के लिए बहुत बहुत खुश हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं, क्या अपनी पत्नी के साथ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विश्वसनीय है, दूसरे को साथ ऐसी बातचीत जिसे नहीं चाहते कि आपकी पत्नी सुने में कभी शामिल न होकर क्या आप अपने विवाह के अनुबंधों के प्रति ईमानदार हैं, क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दयालु और उनका समर्थन करते हैं। भाइयों, क्या आप अपनी पत्नियों के कहते हैं कि आप उससे कितना अधिक प्रेम करता है, ये उसके जीवन में महान आनंद आलाएगा। जब मैं आदमियों से इस पूछता हूँ कि कहते हूँ वह ये जानती है, अब उसको कहना चाहिए, ये शब्द खुलकर स्त्री बहुत अच्छा महसूस करती और आशीषित होती है। जो कुछ आपकी पत्नी आपके लिए करती है उसके आभार व्यक्त करें, उसे प्रेम और आभार को अक्सर व्यक्त करें, यह उसके जीवन का अधिक संपन्न, बहुत सुखद और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। प्रेम की उन प्राकृतिक अभिव्यक्तियों को न रोके और यह अधिक प्रभावशाली होता है जब आप उसे निकट लेकर कहते हैं। क्या आप बच्चों की मदद और घर में कुछ काम करके अपनी पत्नी को सहारा देते हो? क्या धर्मशास्त्र अध्ययन, पारिवारिक प्रार्थना और पारिवारिक घरेलू संध्या जैसी गतिविधियों में पारिवारिक नेतृत्व करते हैं, या आपकी लापरवाही के कारण अपनी पत्नी इस काम को करती है? मैंने अपनी पत्नी से इन अभिव्यक्तियों के महत्व सीखा था। आपने अपने विवाह के आरंभ में अक्सर एक संदेश देने के लिए मैं अपना धर्मशास्त्र को खोलता और मुझे स्नेही समर्थन देने वाली टिप्पणियों पृष्ठों के बीच मिलती। कभी कभी वो इतने स्नेही होते थे कि मुझसे कुछ बोला नहीं जाता था। एक प्रिय पत्नी के वो बहुमूल्य टिप्पणियां दिलासा और प्रेरणा के कानमोल खजाना थी और सदा रहेगी। मैं भी उसके साथ वैसे ही करने लगा था, इसे न महसूस करते हुए कि वह यह उसके लिए कितना अनिवार्य था। मुझे याद है कि एक साल हमारे पास उसे वैलेंटाइन दिन के देने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए मैंने पानी के रंग से फ्रिज को दरवाजे पर एक चित्र बनाने का निर्णय लिया। मैंने एक अच्छा चित्र बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केवल एक गलती की, वह पानी के रंग नहीं थी लेकिन वरन पेन था। उसने मुझे इस चित्र को कभी मिटाने नहीं दिया। मुझे याद है कि एक दिन मैंने पंचिंग मशीन से निकले छोटे गोल कागज के टुकड़े को लिया था और उनके ऊपर मैंने 1 से 100 तक संख्या लिखी। मैंने हर टुकड़े को उल्टा किया, उसके लिए एक संदेश लिखा, हर टुकड़े पर एक शब्द। मैंने फिर उन्हें इकट्ठा किया और एक लिफा में डाला। मैंने सोचा वो इस पढ़कर बहुत हंसेगी। उसके मरने के बाद मैंने उसके निजी चीजों में पाया कि उसने हमें दोनों को बीच बांटे गए साधारण संदेश को कितना महत्व दिया था। मैंने देखा था कि उसने हर एक उन गोल टुकड़े को कागज पर चिपकाया था। उसने केवल मेरे संदेशों को संभाला था, लेकिन उसने न केवल मेरे संदेशों को संभाला था लेकिन उसने प्लास्टिक के कवर में उन्हें सुरक्षित रखा। मैं मानो ये बहुत ही कीमती खजाना है। केवल एक चीज है जिसने उसने इनके साथ नहीं रखा था, यह अभी भी हमारी रसोई की घड़ी के कांच से पीछे है। इस पर लिखा था, जिनन तुमसे कहना क्या समय हो गया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह मुझे हमेशा स्वर्ग के पिता की उस असाधारण बेटी की याद दिलाता है। जब मैं एक साथ गुजारे हमारे जीवन के बारे में सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ हम कितने भाग्यशाली रहे। हमारे घर में हमारे बीच कभी भी बहस या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। अब मैं महसूस करता हूँ इस आशीष उसके कारण आई थी। ये आशीष उसकी सोच से देने, बांटने और कभी भी अपने बारे में सोचने न सोचने का परिणाम था। अपने बाद के जीवन में मैंने उसके नकल करने का प्रयास किया था। मैं सुझाव देता हूँ कि पति और पत्नी के रूप में अपने घर में आप ऐसे ही करें। शुद्ध प्रेम अतुलनीय अच्छाई के लिए प्रभावशाली शक्ति है। धार्मिक प्रेम सफल विवाह की आधार है। यह संतुष्ट वाली भांति विकसित सच्चों के मुख्य कारक है। माँ के धार्मिक प्रभाव को ठीक से कौन माप सकता है? क्या अनंत फल उन बीचों से निकलते हैं जिन्हें एक माँ बच्चे से के विश्वास करने वाले मन और हृदय की उपजाऊ मिट्टी पर ध्यान से बोती और प्रेम से पोषण करती है? एक माँ के रूप में आपको अपने बच्चे की विशेष एकता और विलक्षण क्षमता को समझने की तीव्र प्रतिभा दी गई है। अपने पति के साथ मिलकर आप इन्हें पोषण, बल और विकसित होना का मौका देता है, देती है। विवाहित होना बहुत ही आनंददायक है, विवाह शानदार है। समय गुजरने के साथ आप एक जैसा सोचने लगते हो और एक समान विचार और अभिव्यक्ति रखते हो। पाप के आपके पास कभी ऐसा समय होता है जब आप बहुत खुश होते हैं, कभी परीक्षा का समय होती है, कभी कष्ट का समय होता है, लेकिन प्रभु आपको उन सभी विकास के अनुभवों में एक साथ मार्गदर्शन देता है। एक रात हमारा छोटा बेटा रिचर्ड, जिसे दिल की समस्या थी, रोते हुए जाग गया। हम दोनों ने इसे सुना। अक्सर मेरी पत्नी उठकर रोते है, बच्चे को चुप कराती थी, लेकिन इस समय मैंने कहा मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि उसकी समस्या के कारण जब वो रोना शुरू करता था, उसका छोटा दिल बहुत जोर से धड़कता था। वह उल्टी करता और विस्तार को गंदा हो जाता था। उस रात मैंने उसके तेजी से धड़कते दिल को आराम पहुंचाने के लिए उसे गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश की। मैंने उसको उसके कपड़े बदले और नई चादरें बिछाई। जब तक वो सो नहीं गई, मैंने उसे उठाए रखा। तब मुझे पता नहीं था कि वो कुछ महीनों के मेहमान है। उस आधी रात को उसे अपने बाहों में उठाने मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब वो मरा था। जैसे जिनिन और मैं अस्पताल से आ रहे थे, हमने गाड़ी के साइड में खड़ा किया। मैंने उस अपने बाहों में लिया। हम दोनों थोड़ा सा रोए, लेकिन हमें महसूस हुआ कि मंदिर में बनाए अपने अनुबंधों के कारण हमें उसे पर्दे के पार फिर से प्राप्त करेंगे। इससे उसे खोने का दुख हमारे लिए कुछ कम हुआ। जिनिन का दया ने मुझे बहुत से बहुमूल्य चीजें सिखाई थी। मैं बहुत परिपक्व था और वह बहुत ही अनुशासित और बहुत ही आत्मिक था। विवाह स्वार्थी अपने बारे में सोचने की प्रकृति को बदलने के लिए आदर्श परिवेश देता है। मैं सोचता हूं कि हमें जल्दी विवाह करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि चरित्र में अनुचित गुणों का विकास न हो जिनके बारे में बदला मुश्किल होता है। मुझे उस पुरुष के लिए दुख महसूस होता है जिसने अभी तक अनंत साथी को पाने का प्रयास नहीं किया, और मेरे दिल उन बहनों के लिए रोता है जिन्हें अभी तक विवाह करने का मौका नहीं मिला। आप में से कुछ अकेलापन और परेशानी महसूस करते हैं और यह समझ पाना कठिन है कि कैसे आपको विवाह और बच्चों या अपने परिवार को आशीष मिलेगी। प्रभु के लिए हर बात संभव है, और वह अपने उन वादों की पूरा करते हैं जिनकी घोषणा करने के लिए वह अपने भविष्यवक्ताओं को प्रेरित करता है। अनंतता अतः लंबा समय है। उन वादों में विश्वास रखें और उनके योग्य जीवन जिएं, ताकि आप अपने समय में प्रभु इन्हें आपके जीवन में पूरा करे। सचमुच में आपको वादा की गई हर आशीष मिलेगी जिसके आप योग्य होंगे। कृपया मुझे अपने बहुमूल्य पत्नी जिनिन के विषय में बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन हम अनंत परिवार हैं। मैं अपनी प्रिय पत्नी जिनिन से प्रेम करता हूँ। वो हमेशा बहुत अधिक खुश रहती थी, और अधिकतर यह खुशी दूसरों की सेवा करने से आती थी। जबकि वह बहुत बीमार थी, अपने सुबह की प्रार्थना में अपने स्वर्गीय पिता से कहती उसे किसी की मदद करने के लिए दिशा दिखाए। उसकी सच्ची प्रार्थना कई बार पूरी हुई थी। कई लोगों के बोझ कम किए गए थे, उनके जीवन में उजाला हुआ था। प्रभु के हाथों में औजार बनने के कारण वह निरंतर आशीष हुई थी। मैं जानता हूँ स्वर्गीय पिता की बेटी जिसमें महिमा और श्रद्धा से आपने स्त्री होने की अंतशक्ति को परिपूर्ण किया था, से प्रेम करने का क्या होता है। यद्यपि वह पर्दे की उस पार है, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रशंसा निरंतर बढ़ता और विकसित होता जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भविष्य में उस पर्दे के पार देखूंगा, हम पाएंगे कि हम और अधिक गहरा प्रेम करने लगे। पर्दे के कारण इतने समय तक अलग रहने के कारण हम एक दूसरे को और अधिक चाहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।